for marriage, don't tell anyone. Don't give a batasa to them. Batasa means sweet. In Braj it is niyam or everywhere. Then when the marriage has been pakka, then some sweet has given to all. And they know, by this they know that marriage is going to be held. So don't tell, then they cannot, they should not smell that my marriage is going. In the night we will go there, and only I will have my father Nanda Baba.
Balaram Alsanna.
Not Balaram. Balaram is in their party. He wants that my marriage should be done, not of Krishna. So he is opposite to me. And when I will return with my bride, very beautiful bride, then you can tell, you can invite anybody. Before that you should not do.
अरे कौन गाम ते भई एस गईया कौन
गाम ते भई एस गईया
अरे कौन गाम ते भई एस गईया तू चुप कान में कह दे मैया अरे चुप कान में कह दे मैया सुन ना ले बल दाऊ भैया सुन ना
ले बल दाऊ भैया
अरे सुन ना ले बल दाऊ भैया अरे लगे रहे सब ताक में ये सवल तो श्री दाम ये सब पक्के मुड़ चढ़े तेरा भोरो है लाला श्याम मंगाए दे बहु छोटी से मैया छीऊं मैं तेरे पाम मंगाए दे बहु छोटी
डोंट टेल बलदेव He will tell everywhere. And you don't see that Subal, Siddham, Madhumangal are very simple. They are so crooked. They can go to the father of that girl and they will tell that, no, Krishna is not good. He is so bad, he is so thief and all. Don't tell them. But mother, don't delay. At once, do you know, where my marriage has been settled, if you don't want to declare it, tell in my ear, so that Baldev will also not know. And then alone or with Nanda Baba, I will go there and marriage, and then that bride should come to me.
गुप चुप को ब्याह रचाऊं गुप चुप को अरे बाबा ले बरात संग जाऊं इन पे नाए गीत गवाऊं गोपिन पे नाए गीत रात में ब्याह के मैं आऊंगा घर माही बिन हरदी रंग चोखो चढ़े मैया लगे ना एक छदाम मंगाए
यशोदा माँ बिगन टू लाफ एंड ही सी जोक्ड विथ हिज सन बिलेवेड सन आई हैव नो मनी टू मैरिज यू हाउ कैन आई मैरिज कृष्ण टोल्ड That no expense at all. I will go on foot, not on ghodi, on horse. No ornament at all. Nothing, no drum. No, all these persons will go alone. Or with Baba, I will go alone and married without any pais, any without dakshina. Nothing, no new clothes and that. दैट सीन सर विदाउट पाइस हल्दी भी नहीं नो टैमरिन नथिंग विदाउट पाइस माय मैरिज विल बी डन
गोपियों से गीत ना गा पाऊं
एंड आई विल नॉट टेल एनी गोपी टू सिंग मैरिज सॉन्ग्स एंड सो आई विल कम with my new bride here with you. बस हरे कृष्णा महादेव जी हैं बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है मोर कोयल पपीहे सूख सारी देखे इसमें रहते हैं इसमें तरह तरह के फूल पौधे विशेष करके तमाल फूल और ये कदम्ब और ये सब पेड़ सुंदर सुंदर लगे हुए हैं उस समय इसकी क्या अवस्था होगी शंकर जी का यहाँ पर एक मूर्ति है महादेव जी की इनका नाम है आशीषेश्वर महादेव परजन्य जी नंद बाबा के पिताजी को पुत्र नहीं था तब उन्होंने इनकी आराधना की इन्होंने वरदान के रूप में उनको कहा आकाशवाणी हुई कि आपको 5 पुत्र हो गए बड़े गुणी और बड़े सुंदर और बीच वाला जो होगा उसका नाम होगा आनंद वो भूमंडल का अधिपति होगा और उसको सर्वगुण संपन्न महाशक्तिशाली महासौभाग्यवान एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा कृष्णा वो तुम्हारे वंश की प्रतिष्ठा समस्त विश्व में फैलाएगा सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और यहाँ से तब चले गए गोकुल में 5 पुत्र उनके हुए नंद बाबा का पुत्र गोकुल में हुआ अभी तक उनका यहाँ पर शिव विग्रह ये है आशीषेश्वर चलिए हम लोग उनको प्रणाम करके और फिर हम अपने डेरा में लौट जाएंगे
कलेवा होगा इधर
वहीं पर कलेवा कहाँ
यहीं पर होगा
कलेवा ले आया है तो तब देरी कहीं यहीं पर कर लो ले आओ वो मोती कुंड कहलाता है या मुक्ता कुंड हम लोग गए थे आशीषेश्वर कुंड में तो कृष्ण ने अपनी मैया से मैया के चरण छू रहे हैं हम मैया को मना रहे जे मैया और मैं बच्चा नहीं रह गया मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ मोटा उटा हो गया हूँ मेरी शादी कर दे तो सगाई बरसाने से सचमुच में आ गई तो बरसाने से सगाई आई तो सगाई में लड़के के लिए कपड़ा लत्ता और अंगूठी सोने का हार और सब चीज़ें आती हैं आभूषण आता है तो वृषभानु महाराज जी की 11,00,000 गायें थीं तो उन्होंने मुक्ता मणियों की माला कृष्ण के लिए अपने भावी जमाई के लिए बात पक्की के लिए दिया कपड़े लत्ते दिए किंतु स्पेशल रूप में
एक खाली मुक्ता
मणियों की मुक्ता दी माला तो यहाँ आया नंदगांव में तो जितने वहाँ के पूर्वासी थे बूढ़ी बूढ़ियाँ और बड़े बड़े लोग थे देखने के लिए उत्कंठित थे कि शादी से सगाई पक्की करने के लिए कौन कौन सी चीज आई है बक्से में भरा देखा सुंदर सुंदर मोतियों की माला कपड़े लत्ते अच्छे अच्छे देख करके नंद बाबा के और यशोदा जी के होश उड़ गए किस लिए होश उड़ गए देख करके उनको आनंद होना चाहिए अजय इसके बदले में ऐसे ही कोई चीज हमको लड़की के लिए भी तो भेजना पड़ेगा
उदी देना पड़ेगा
इसलिए हमारे पास तो, और यदि इसको लौटा देते हैं तो कहेंगे ये गरीब आदमी है ये हमारी दी हुई चीज को लौटाया इसलिए अब क्या किया जाए अब दूसरे तीसरे दिन में सगाई जाने वाली है उल्टी लड़की के पास में नंद बाबा बड़े चिंतित हो गए यशोदा माँ जी से बातचीत करके ये ठीक कर रहे हैं जैसे ये तो मणियों की जो माला आई है मुक्ता की हम लोगों के पास में तो ऐसा नहीं है अब क्या किया जाए जब उनको इस प्रकार से कृष्ण ने चिंतित देखा तो कृष्ण झट मैया के पास में मैया वहाँ से सगाई में क्या चीज आई है? कहा कुछ नहीं आई है, आई क्या है? तो उन्होंने बहुत जिद किया, तो उन्होंने वो सब चीज़ें दिखलाई, तो उनको देख करके उनको बड़ी पसंद आ गई वो चीज़। मैं मैया ये हमको दे दे अभी
पहना,
वो पहना दे अभी। मैया ने बहुत समझाया, वो मान नहीं रहे। मैया किसी काम के लिए इधर उधर गई, किंतु उन्होंने दिया नहीं। नंद बाबा से कहा, नंद बाबा भी नहीं दिया। इतनी बेशकीमती मणियाँ, ये बहुत दुर्लभ हैं संसार में, तो ये कैसे दी जाए? ये खेलेगा, ये इसका मूल्य नहीं समझेगा, इसलिए उनको नहीं दिया। बार बार जाने पर उनको डांट डपट करके समझा बुझा करके लौटा देते थे। किंतु उनको तो ऐसी लत है, अभ्यास है, जो जिस चीज़ को देखेंगे और इच्छा होगी जरूर लेंगे। अब इसके बाद में वो जब इधर उधर चली गई और नंद बाबा से परामर्श करने लीजिए, कैसे इसको क्या इसके बदले में सगाई के लिए भेजी जाए। इतने में कृष्ण वहाँ आए और किसी प्रकार से चोरी करके एक मणि की माला उसमें से चुरा ली, और चुरा करके
चुराने की आदत तो था ही,
यहाँ चले आए। पंडा जी कह रहे हैं जब दाऊ भैया भी था, दाऊ भैया को ले लिया। दाऊ भैया को किस ले लिया? हल चलाने में बहुत तेज है, उसके पास में हल है ना, इसलिए हल से चलाया, यहाँ कर्षण किया,
जोत दिया खेत को,
बलदेव प्रभु से जोतवा लिया और ले करके वो जो मणि थी उसमें दे दिए। और इस कुंड को खोदा उसको पानी सिंचन करने के लिए, इस कुंड से पानी को वो अपने हाथों से सींचते, और दो एक दिन में ही उसमें से अंकुर निकले। धीरे धीरे वो लता बढ़ गई, सुंदर सुंदर उसमें फूल आए, फूल से फल की कुढ़ियाँ निकली, और कुढ़ियों में वो मोती धीरे धीरे पुष्ट हो गया। पुष्ट होने के बाद में जब एकदम सूख गया, तो उसमें से उसको निकाल करके मुक्ता को उसमें से बाहर कर लिया। बाहर कर लिया, पिताजी और मैया को दे दिया, जो तुम लोग इसके लिए चिंतित हो तो यही सी को भेज दो। बड़े नंद बाबा प्रसन्न हुए, उन्होंने दो एक माला भेजी, तीनों ने गाड़ी छकड़े पर
गुरु के सिंह में बांध दिया, खुरो में बांध दिया
और वहाँ पर भेजा। अब वहाँ पर ललिता इत्यादि सखियों को, श्रीमती जी को ये पता चला, जैसे हमारे पिताजी ने तो थोड़ा सा ही भेजा था और ये गाड़ी में भर कर छकड़े में भर करके भेज रहा है। तो वो यहाँ पर वो उसकी रखवाली बाकायदा करते थे, तो यहाँ पर वो सब सखियाँ आईं, ललिता विशाखा इत्यादि आईं और कृष्ण से मांगने लगी जो हमें इसमें से थोड़ी सी मुक्ताएं हमको दो। कृष्ण, मैं नहीं देता, तुम लोग क्या करेगी? तो हम अपनी सखी को सजाएंगी। आ तो तुम्हें याद नहीं है जो तुम्हारे पास में कुछ मड़ियाँ थीं, मैं मांगने गया तो तुमने पूछा जे किस लिए? तो हमने कहा जी अपने बैल को और गाय को और बछड़े के खूर में बांधना है,
सिंह में।
और तुम लोग दिया नहीं सिंह में, हम तुम्हें नहीं दे सकते। अंत में बहुत निहोरा करने लगे, जब नहीं दिया तो वो सब सखियां बोले तब क्या हम न मोती की खेती नहीं कर सकती। उन्होंने अपने आप उस खेत को एक पास में वो वहाँ पर बरसाने में एक मुक्ता कुंड है, वहाँ पर खेत को जोता, और खेत को जोतने के बाद में उन मड़ियों को बीज के रूप में दिया और अपने अपने घरों से घड़ों घड़ों दूध लेकर के उसको सींचने लगी। कुछ दूर में उसमें अंकुर क्या निकलेगा, उसमें अंकुर माने वहाँ पर जंगली जो घास होती है कांटे वाली, कांटेदार उसमें से निकली। तो पहले उनको देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, जाओ मुक्ता निकल रही है मुक्ता की, किंतु थोड़े देर के बाद में निकलने के बाद में कांटे और उसमें ये सब निकलने तो बड़ी उदास हो गई। फिर कृष्ण के पास में आई, कृष्ण से बहुत निहोरा किया, तब क्या हुआ? मुक्ता
कृष्ण ने मधु मंगल को लगाया नहीं सुबल को बोले कि अच्छा ये हमारा ये मुनिब होगा और यही हिसाब किताब करेगा कि जितना मुक्ता के
बदले बदल में हाँ, तो उन्होंने कहा जैसे अच्छा अच्छा मुक्ता हमारी नहीं फली तो कुछ मुक्ता हमको दो का जैसे ये लेन देन का व्यापार मैं नहीं करता ये मधुमंगल मुनि इसका लोका जोखा और ये सब करेगा जितना मुक्ता देगा उसका डेढ़ा लेगा इस प्रकार से यही सब क्रीड़ाएं बचपन की क्रीड़ाएं हैं कृष्ण ऐसे अद्भुत अद्भुत करते थे राधा जी और भी अद्भुत अद्भुत कार्य करते थे
गोपियों ने कृष्ण से कहा अरे धूर्तराज शिरोमणि
हाँ रत्न सरोवर वहाँ बरसाने में और उसे एकदम डुबकी लगाओ और उसमें से रत्न निकल जाए बहुत ठीक
हाँ राजा ने हाथ से हार भेजा है सगाई के लिए
हाँ
तो यशोदा मैया और कृष्ण जी ये नंद बाबा
हाँ
परामर्श किया है
हाँ
ये ब्याह तो किए होगा ना क्यों वो राजा हैं और हम जमींदार हैं गोपन के राजा हैं
ठीक है
9 लाख गाय है हमारी गाय और घर द्वार सभी बिक जाएंगे लेकिन यार की पूर्ति न कर पाएंगे
हाँ देखो फिर
उन्होंने कहा कि अभी नाव पंडित को आज सहमत कर ले कल ये चला जाए भेज देना तो कन्हैया ये बात को जान गए वो चरा रहे थे गायें इधर तो उन्होंने जो है आ करके चुपके से यहाँ से वो हाथ चुरा लाए और ला करके यहाँ से 5 रोज में फूल लगने लगा छठे रोज जो है फल लग गया सतह रोज बोले कहना चल भैया आप जितने लेना उतना ले यहाँ आ गए तो बाग में का मोटी मोटी फैल रहे अब बीने मान के ना तो झार झार करके जुहार करके भर करके नाव पंडे सभी देखने आए हैं बाग उस दिन के गाड़ी और ठकड़न में उठन में लाद के दान दक्षिणा में दे दिए नाव
पंडे
यहाँ से ले करके जब ये चले भरसवान राजा उधर बाढ़ देख रहे कि 7 दिन हो गए और नाव पंडित अभी सगाई पर भी ना आए ये अब देख रहे हैं कि अब तो ये घर भेजा है और ये जो है गाड़ी में और चकड़न में ऊपर में मोटी लादे चले जा रहे अब वो उदास होकर के बैठ रहे नाव पंडित जब पहुंचे तो उनसे हाल पूछा वो कह रहा मोती आज के ताजे हैं उनके मोती नहीं है जब इनके उनके मोती इतने रोज निकल रहे हैं हमारा राज इतना बड़ा होते हुए तब एक हार मैंने जीवन भर में बना पाए तो हम उनसे विवाह कैसे करेंगे राधा उधर से आ गई बोले कि बाबा उधार कैसे बैठे तो उन्होंने बताया कि बेचारी जीवन में एक हर महीने कमाया तुम्हारी सगाई में भेजा बरसाने और वहाँ पे उनके बाग हैं आज के हमारे ये ब्याह कैसे करे हो उन्होंने कहा बाबा चिंता क्यों करते रतन सरोवर में चले जाओ जितना चाहो उतना रतन निकाल ले उन्होंने वहाँ रतन सरोवर बनाया
बहुत अच्छा बोलो मुक्ता कुंड की जय 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 श्री राधे जहाँ जाओ ब्रजवासियों से और उसके स्थान के जो रहने वाले महात्मा उनसे पूछो ये यहाँ पर कौन सी लीला हुई वो
सुधाई व जन जनी ब्रजवासी निवेदी व चरण धरिया
रसिक वैष्णव के साथ में जाओ जहाँ जहाँ कृष्ण की लीलाएं हुई हैं और वहाँ के स्थान के रहने वाले लोग महात्मा जानते हैं उससे पूछो देखो कितना आनंद है यही तो ब्रज में भ्रमण करने का ये तरीका है और यही फल है जय जय श्री राधे आप लोगों ने सब प्रणामी दिया होगा नहीं मुक्ताचरित तो उसमें हिसाब किताब मधुमंगल करेगा किस चीज का लेन देन का हम मुक्ता देंगे उसके बदले में कुछ लेंगे तो इसमें बहुत कुछ रहस्य छिपे हैं और यदि वो कुंड में यदि मोती मिल गया है ना मोती मिल लेता उसमें कोई वाद विवाद की बात नहीं रह गई नहीं? इसमें वो भी ठीक है और हम लोगों का दान के लिए
मुक्ता
चरित्र की किंतु इसमें रस भरा पड़ा है, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा समाधि में ये देखा हुआ चीज है, दोनों का सामंजस्य इसको कर लेना पड़ेगा। गौ प्रमानंद में सनातन गोस्वामी की भजन कुटी और दान बिहारी का दर्शन करके आश्रम में जाएंगे।
पहले ये रास्ता घाट कुछ ये सब पान सोर के पास के रहने वाले ये सब उपवन था। कृष्ण के लीला के समय में तो और सुंदर उपवन था। कृष्ण यहाँ पर गोचारण करके पान सरोवर में बछड़ों को गायों को पानी पिलाते, अपने पानी पीते, अत्यंत सुंदर पवित्र निर्मल मीठा पानी होने के कारण इसका नाम पड़ा बावन सरोवर। कमल के फूल इसमें खिले रहते थे, भौरे उस पर गुंजार करते थे, कोयल कुहू कुहू करती थी चारों तरफ। अभी भी मोर का शब्द भी यहीं से सुन रहा था, के का मयूर कह रहा के, और मयूरी कह रही है का, के पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, मयूरी कह रही है श्रीमती राधिका के लिए का शब्द का प्रयोग। कौन जो कृष्ण रूपी मतवाले रसिक को अपने मान रूपी अंकुश से उसे उठाती बैठाती है, उसको एकदम बसीभूत कर लेती है। कौन है ऐसा जगत में? एकमात्र राधिका। मयूर कहता है तुम नहीं जानती के माने कौन? राधिका जी के धैर्य, धर्म, सहिष्णुता, लज्जा, मान इसके पर्वत को भी चूर्ण कर देता है अपने एकमात्र दर्शन की छटा से। वो कौन है? कृष्ण। सुख सारी द्वंद करते हैं परस्पर यहाँ। सनातन गोस्वामी में देख करके यही भजन का सर्वोत्तम स्थान समझा। यही पावन सरोवर के किनारे बैठते थे, कृष्ण गोचारण करके अपने गैया बछड़ों को वो रास्ता है उधर से लेकर के आते। गोविंद लीलामृत के अनुसार में या कृष्ण भवनामृत के अनुसार में राधा जी का एक राजभवन पास ही में था। विश्वभानु महाराज ने बगीची के रूप में जावट का यहाँ की जमींदारी उन्होंने कुछ ले ली, और जो और श्रीमती राधिका जी के लिए अपनी लाडली बेटी के लिए वहां पर एक राजभवन बना दिया था। उस राजभवन से ही वो देखती थी कृष्ण गायों को चरा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, बंसी वादन कर रहे हैं। जब यहाँ से स्नान करते तो उधर से वो भी स्नान करने के लिए अपने सखियों के सहित में आ जाती। गोचारण करते जबकि लौटते यदि उनको मान लिया जाए वहां जावट में, तो गोचारण करके यहाँ पर जबकि नंद ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां से कैसे देखेंगे? किंतु यहाँ पर देखना संभव है इस लीला के कथा के अनुसार में। कृष्ण गोचारण करके आ रहे हैं, गायों के तरफ में ख्याल नहीं है, ख्याल उनका किधर है? इधर उधर झांक रहे हैं, कुंजों में, उसके अटारियों में, खिड़कियों में झांक रहे हैं, आंखें खोज रही हैं। और यही से गोपियां नैनो पलाच तनुम गो गो गोप संघावृतम गोविंदम कलवीवादन परम दिव्यांगीवर कांति बिंदु बदनम बरहावतम संप्रियम श्री बत्संग उदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदर गोपियां यही से नैन से उनकी आरती उतारती और कृष्ण उनकी आरती को उन आंखों से ही ग्रहण करते थे। वो स्थान है पावन सरोवर। कभी कभी नंद जसोदा भी यहाँ पर आते थे स्नान करने के लिए, किंतु जसोदा जी जाती थी प्रतिदिन
जसोदा कुंड
में और अपने दोनों बच्चों का और हजारों बच्चों का वहाँ पर क्रीड़ाएं का दर्शन करती थी। वहाँ यहाँ पर मैं समझता हूँ लाखों तीर्थ स्थान है, पद पद में यहाँ पर है। दोहनी कुंड होगा, पंडा जी कहाँ है? पंडा जी हमारे नहीं आया, अच्छा दिखलाया, छाछ कुंड पास में है।
हम लोग निकल गए थे।
हजारों कुंड यहाँ पर चारों तरफ में है। मनिहारी कुंड है, पानीहारी कुंड, जहाँ से कि पानी भर करके लाया जाता था उनको। कितने कुंड हैं और कितने दर्शनीय स्थान है, लीला स्थलियां हैं, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। एक एक रेणु के में ये सब तीर्थ है। कृष्ण की यहाँ पर बहुत दिनों तक लीलाएं हुई। जब गोपियां आई और कृष्ण को यहाँ से अक्रूर ले गई, इसके बाद से गोप गोपी लोग कहीं नहीं गए, यहीं पर रह गए। विप्रलम्ब की लीला वहां पर बतलाया था। ये सब मिलन का स्थान है। यशोदा जी का वात्सल्य स्नेह यहाँ पर अधिक है। यदि कुछ है तो थोड़ा सा उसमें मधुर रस उसमें मिला है, इसलिए राधा कुंड को हमारे गोस्वामियों ने इससे भी अधिक शुद्ध माधुर्य का वहां पर स्थान बदला है। इसमें दास्य भी सम्मिलित है, सख भी सम्मिलित है, वात्सल्य भी सम्मिलित है, और इसके बाद में मधुर रस भी है। मधुर रस कुछ कम है, वात्सल्य और सख ही यहाँ पर अधिक है। पौगंड की लीला यहाँ पर हुई है। यशोदा जी ने अपना जितना स्नेह था सब वात्सल्य भाव कृष्ण के ऊपर में उड़ेल दिया था। यहाँ ब्रह्मा जी देख करके विस्मित है। नारद जी एक बार आए, उन्होंने देखा, अरे ये तो वेदों का प्रतिपाद्य विषय परब्रह्म। नंद बाबा के महल में, उनके आंगन में लोटपोट कर रहा है, रो राज मैया गोदी में चढ़ूंगा, दूध पीऊंगा, और वो इस तरह से करते हुए अंगली दिखला रही है। तू चोर हो गया है, ढीठ हो गया है, धूर्त हो गया है, अब तुझे मैं गोदी नहीं, अभी तुम्हारा श्रृंगार किया, अभी लौटने लग गया, अभी दूसरे के घर से मक्खन चोरी करके आने लग गया, मैं नहीं दूंगी, और वो अपने लौट रहे हैं। ये देखो तमाशा, ये परब्रह्म यहाँ पर लौट रहे हैं, उनकी गोदी में जाने के लिए ललक रहे हैं, और ये यशोदा मैया उनको इस प्रकार से कह रही है, ब्रह्मा इत्यादि मन के द्वारा भी, तपस्या के द्वारा अत्यंत पावन बना हुआ हृदय में भी उनका ध्यान लीलाओं का नहीं कर पाती, और देखो तो ये गोपी की क्या स्थिति है। इसलिए उन्होंने कहा था, सुति मपरे सुतमितरे भारत मन्ने भजंत भव गीता अमी आनंदम बंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। जिसके आंगन में ये पर ब्रह्म
खेल
धूल में लोट पोट रहा है, ऐसे नंद बाबा को के जो भवन है, नंद बाबा को मैं प्रणाम करूं। और लोग वेदों का अध्ययन करके निर्विशेष ब्रह्मवादी भी बन सके तो बन जाए, संसार के भय से भीत होकर के हम ब्रह्मास्मि करते हैं, वो करते रहे, माँ भारत का भजन करे, अर्थात माता पिता और ये वर्णाश्रम धर्म का आदर करते हैं तो करते रहे। भजन तो भाव भीता, संसार से भीत होकर के इन सब का ये शरण ग्रहण करें। वेदों में धर्म और धर्म इत्यादि की बातें की गई है, हमको उससे कोई संबंध नहीं है। मैं तो नंद बाबा के आंगन में, जहाँ पर कि वो परब्रह्म लौटता पलौटता है, मैं नंद बाबा की ही वंदना करता हूँ। ऐसे नंद बाबा के या नंद गांव में आप लोग आए हैं, हम लोगों का परम जन्म जन्म कोटि कोटि का ये सौभाग्य समझ लीजिए। आज पावन सरो में आ रहे हैं, कहाँ मुक्ता कुंड में गए, अभी हम लोग टेर कदम्ब में गए, कहाँ हम लोग गए, उद्धव क्यारी में गए, नंद बैठक में गए, नंद बाग में गए, चरण पहाड़ी अक्रूर का स्थान वहाँ गए, बंदा देवी के स्थान गए, कितना गिनाऊं। अभी वहाँ पर चलेंगे, हम लोगों का पाठ प्रवचन होगा, उसमें संक्षेप में और सबका वर्णन करें। यहाँ पर सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है। सनातन गोस्वामी जी हमारे संप्रदाय की गुरु है। पहले वे स्वरूप दामोदर, इसके बाद में राय रामानंद जी है, इसके बाद में इन्हीं का नाम आता है। रूप गोस्वामी के गुरु हैं। क्यों गुरु हैं? उन्होंने बृहद भगवतामृत ग्रंथ लिखा, श्रीमद्भागवत दशम स्कंद की टीका
लिखी, और वैष्णव दर्शन
पहली बार लिखा, जो समस्त वैष्णव समाज चमत्कृत हो गया,
आज सवेरे उसके लिए कुछ थोड़ा सा मैंने बतलाया था। ऐसी सुंदर सुंदर रश्मि टीकाएं की हैं जिसको देख करके सिद्धार्थ जी और हनुमत जी बरसायन जी और सब लोग चमत्कृत हो जाते हैं। अभी भी टीकाओं को देखने से ऐसे मालूम पड़ता है। ये बृहद भगवतामृत हमारे रूप गोस्वामी के लघु भगवतामृत का ये मूल है। भक्ति रसामी सिंधु उज्ज्वल नीलमणि का भी ये पथ प्रदर्शक है। ऐसे सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया, हमारे समाज को हमारे संप्रदाय को एकदम बांध दिया चारों तरफ से। हम लोग का विचार क्या है, हम किसका भजन करने जा रहे हैं, भजन की का उपासना मार्ग क्या है, उन्होंने बतलाया। और भी ग्रंथ हमारे समाज को ऊपरी रूप से हरिभक्त विलास के द्वारा एकदम बांध करके रख दिया, जो कैसे मंदिर होना है, कैसे उपासना, कैसे वैदिक भक्ति, ये सब का विषय उन्होंने किया। ये यहीं पर भजन करते थे, उनकी बातें हम दो एक हम आप लोगों को हम लोगों ने सुनाया है। अभी ये बच्चा ने सुनाया, अभी रात हो जाएगी, बस यही उनके चरणों में हम लोग पुष्पांजलि दे करके वहाँ पर थोड़ा सा उसके वर्णन करने की चेष्टा हम लोग करेंगे। आप प्रणाम करके आप सीधे वहाँ पर आ जाइए जहाँ पर हम लोग ठहरे। आज हम लोगों की बड़ी भारी एक गलती हो गई, मैं जब भी आता था सब वैष्णवों को यहाँ से बुला करके एक साथ में प्रसाद इत्यादि खाता। आज हमें याद ही नहीं रही, हमारा कपाल फूट गया, हमको याद ही नहीं रही, इसलिए वैष्णव से हम क्षमा मांगते हैं। अच्छा जैसा हो, सनातन गोस्वामी पाद की पावन सरोवर की जय। शिशी यहाँ पर एक और चीज भूल गया, ये इस स्थान की स्थापना हमारे पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद श्री संत भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने की। प्रभुपाद जी का यह मठ पहले जो था हमारा बंगाल में, उस समय में साग की पत्तियां बनती थी, वही ब्रह्मचारी लोग खाते थे, बोरा बिछा करके सोते थे, दिन रात भजन करते थे, रहने के लिए घर नहीं थे, पलंग और चारपाई और ये घड़ी टड़ी ये जो देख रहे हैं ये सब एकदम कुछ नहीं, निष्किंचन रूप में भजन करते थे किसी प्रकार जीवन धारण करके। हम लोगों के गुरु महाराज जी बड़े भारी जमींदार थे, मिली के थे ये महाराज जी थे, वो भी बड़े रेलवे में बहुत बड़े अफसर थे, सब लोग छोड़ करके आए। ये बोले जैसे मैं 5 रुपया दिया करूंगा महीने में, उस समय में आज से करीब 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 70-80 वर्ष पहले लोग बड़े प्रसन्न हो गए। उस समय में 1 रुपये में 20 किलो चावल आता था, 1 रुपये में तो हमने देखा था जी 1 रुपये में 1 मन गुड़ आता था, 1 रुपये में 8-10 दिन खूब अच्छी तरह से 10-20 आदमी का चल जाता था। उस समय वहाँ पर साग सब्जी किसी प्रकार से मिला करके सब्जी इत्यादि से मठ चलता था। जब ये आए तो ये पैदल ऐसे नहीं चलते थे, कारों में जाते बड़े बड़े सेठों के यहाँ और ऐसे हरी कथा करते जो 10-10, 20-20 हजार रुपया तेल घी गुड़ इत्यादि सब आने लगा और मठ एकदम चारों तरफ में बनने लगे, मायापुर इत्यादि मठ बन गया और चारों तरफ भारत में प्रचार हुआ। इनकी योग्यता दे करके इनका नाम रखा अपराकृत भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज का। सारंग कहते हैं बजाने को, गीत के साथ में सारंग बजता है ना, और सारंग का स्वर इतना कि हारमोनियम इत्यादि नहीं, हारमोनियम कोई वाद्य संगीत का कोई ये नहीं, ठीक नहीं है वो, उसमें स्वर ऐसे मूर्छना इत्यादि आरोह अवरोह उसमें नहीं आ सकता है जितना कि सारंगी में आता है, इसलिए भक्ति सारंग अतः उस कीर्तन के साथ में ये सारंग बजता है, उसकी सहायता करता है। तो ये प्रभुपाद जी के ये भक्ति रूपी ये सारंग थे, इनको उन्होंने इंग्लैंड में भेजा, पाश्चात्य देशों में भेजा और वहाँ पर जाकर के ये बड़े बड़े लोगों से मिले, वहाँ के राजा से मिले। उस समय में कौन थे, एलिजाबेथ थी या पंचम जॉर्ज इत्यादि युवराज थे, उनसे मिले, यहाँ का जो वायसराय था उससे वो जाकर के मिले और वहाँ पर उन्होंने
पहली बार वन महाराज जी गए थे, वो वहां से चले आए थे, इसके बाद में प्रभुपाद जी को उन्होंने भेजा था, वहां पर प्रचार किया। भारतवर्ष में बहुत जगह इन्होंने मठ इत्यादि की, हमारे गुरु महाराज के परम बंधु थे। इस प्रकार से उन्होंने ये स्थान को दे करके इस स्थान को उन्होंने लिया था और दो एक कोठरी बना करके भजन करने के लिए रखा था। पीछे से हमारे ये महाराज जी भक्ति क्या अकिंचन महाराज जी हैं, उन लोगों के अनुगत्य में बहुत सुंदर सुरम में छोटा सा मंदिर कितना सुंदर बनाया और भजन करने के लिए ये कोठरियां बनाई। मैंने भी यही सोचा था कि मैं अंत में यहीं पर आऊंगा, इन लोगों के आश्रय में इसी पीलू के वृक्ष के नीचे अकिंचन रूप में कुछ दिन भजन करूंगा। ये लोग परम सौभाग्यवान है जो निरपेक्ष होकर के ये भजन करते हैं। विशेष करके हमारे ये भक्ति चकोर सौती महाराज, ये सब लोग भजन करते हैं, हमको भी देख करके इच्छा होती है, किंतु अब सामर्थ्य वैसे भजन करने की नहीं है, माँ धुकरी भी नहीं लेकर के जीवन निर्वाह कर सकता। हम इस स्थान को और महाराज जी को भी प्रणाम करके और हम लोग अब चलिए, नहीं तो रात हो जाएगी। गौ प्रेमानंदे।
ये कोकिला वन है, यहाँ पर बहुत ही गंभीर वन था, अभी ब्रज में समस्त वन कट गए हैं, तभी ये गोकिला अभी कोकिला वन अभी तक अभी विद्यमान है। इसमें सुंदर सुंदर पक्षी, विशेष करके कोयल इसमें रहती थी, अभी भी हैं, इसलिए इसका नाम कोकिल है, कोकिल वन। विशेषता कृष्ण यहीं से बेर के पेड़ पर बैठ करके छिप कर कोयल जैसा ठीक ऐसा ही अनुकरण कर कुहू कुहू करते थे। पास ही में यहाँ पर यह जावट है, इसलिए उनको बुलाने के लिए ये कोकिल जैसा शब्द करते थे, इसलिए इस वन का नाम कोकिल वन। 50-60 वर्ष पहले इस वन की और भी रौनक थी, इसमें हिरण इत्यादि रहते थे, खरगोश हिरण मयूर, मयूर अभी भी हैं, कोकिल भी हैं। 5-7 मील का ये परिक्रमा इसकी होती है,
पंचकोशी
परिक्रमा होती है, बहुत से दूर दूर देश के लोग आते हैं और इसकी परिक्रमा करते हैं। आज हम लोगों का अधिक विलम्ब हो गया, इसलिए जल्दी अधिक हम जहाँ पर ठहरेंगे वहाँ पर बतलाएंगे। अब यही समझिए कि ये कोकिल वन है, यहाँ पर कृष्ण कोकिल का अनुकरण करके और सब सखियों को यहाँ पर बुलाते हैं। यहाँ पर राष्ट्रस्थली भी है, यहाँ पर सुंदर सरोवर हैं, यह सरोवर का अब उद्धार भी अभी यहाँ के महात्मा जी कर रहे हैं, बड़े परिश्रम से इसको ये फिर से नया इसको रूप दे रहे हैं। We have come to कोकिल वन, दिस इज कोकिल वन, वी आर नियरर टू जावट एंड ग्राम। दिस वन इज वन ऑफ द बिगेस्ट वन एमोंग 12 वन, मधुबन ताल वन कुमुद वन बेहुला वन महावन काम्य वन खदीर वन कोकिल वन भद्र वन भंडीर वन माठ वन
महावन
महावन बेल वन वृंदावन महावन
लौहवन
लौहवन। दीज आर द मेन वंस, देर आर सम उपशाखा वन 12 एंड 12 उपवन, देर आर 36 वंस हियर इन वृंदावन एंड अमंग वन वन देर आर हंड्रेड्स ऑफ वन अगेन लाइक वृंदावन। इन वृंदावन यू सी
अटला वन किशोर
अटला वन
किशोर वन
सेवा कुंज वन निधि वन चोर वन चोर वन इज आल्सो देयर सो मेनी वन। हियर कृष्ण यूज टू सेट ऑन ए बदरी
पाम ट्री
पाम ट्री पाम पाम नॉट
दुर्गम स्पेलिंग है एकटा पी ए
क्या क्या होगा भाई बताइए बद्री का बद्री जानते हैं बेर
बेर आई डोंट नो इंग्लिश महाराज
बेर यू नो
नॉट डेड
नॉट डेड
फिर थॉर्न
बेर बेर
बट यू नो कृष्ण लाइक बेर बिकॉज when it is about to ripen its color golden. Becomes golden there are two kinds of bear
red
one little reddish very sour very sour but this is very sweet
gold color. If,
and gold color like Srimati Radhika coming very mane aabha asti hai isme
glow
like pearls
it glows like pearls
the krishna used to sit on that badri ped badri tree and he calls radhika in the same swar
same voice
same sound
voice
as kukku sings kuhu 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 and in kuhu Srimati radhika name So they used to know that Krishna is calling us and they used to come here and meet Krishna and to dance and to make ras and so many kinds of Bihar and Bilas used to dance. It is a very good one. So many kakus, so many peacocks, so many deers still will be seen here. Very good big pond here. Let us see and the story of this place I will tell another place.
Gaur Pramanande. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
We are seeing this
pilu
pear, pilu
tree.
It is of 5,000 years before. He has seen the Krishna pastimes, and here there was a bear pear that I told, and Krishna used to sat on that branch, and he used to do like kakkus, kuhu kuhu. These all trees has seen Krishna pastimes and doing viras here. So we are praying to them in their lotus foot that you should be merciful to us to have keep your mercy that we can realize all Krishna lilas. By eyes we cannot see, but if they will do mercy to us, we will be able to see and realize all these things. Don't disbelieve, don't have any
doubt
in it. They are so much powerful that they can give anything to us. They are not ordinary trees and all these things. So we pray this kunda and all these trees and the holy land
and Krishna as a kokil, that you should be merciful to us, to reflect your mercy in our heart.
ये कोकिला कुंड अनुदर बता सूर्य कुंड उधर एक कुंड है बता रहे सूर्य कुंड
लेट अस वी गो आप चलिए हम लोग
सांपों का कोई औचित्य नहीं था महाराज सर्प इतने सारे हैं इसका क्या औचित्य इसका मतलब इसमें नहाते नोते
अरे कृष्ण भी तो सर्प है ना सबसे भयंकर क्यों मारो
দেখিতে ভুলিব বা কবে রাধে জয় জয় মাধব দয়িতে
জয় জয় মাধব